ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी की सभी प्रमुख सब्जी, फल और फूल मंडियों के सुगठित प्रबंधन, रखरखाव और सुधार को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली पुलिस की अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा, चंद्रावल वाटर वर्क्स में मरम्मत कार्य के कारण राजधानी के विभिन्न हिस्सों में सोमवार और मंगलवार को पेयजल आपूर्ति बाधित हो रहेगी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षता सिंह। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी की सभी प्रमुख सब्जी, फल और फूल मंडियों के सुगठित प्रबंधन, रखरखाव और सुधार को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा के अलावा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार मंडियों की कायाकल्प को लेकर बेहद गंभीर है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि इन मंडियों का परिचालन आधुनिक मंडियों की तरह हो और यहां के दुकानदारों, फसल बेचने वालों और आम लोगों को सभी आधुनिक सुविधाएं मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार किसानों, लघु व्यापारियों और उपभोक्ताओं को एक समृद्ध, सुव्यवस्थित और जिम्मेदार मंडी प्रबंधन प्रणाली प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली सरकार में मंत्री और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से विधायक परवेश साहिब सिंह ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। श्री सिंह ने डी ब्लॉक गोल मार्केट, रकाबगंज के गुरुद्वारा फ्लैट्स और सरोजनी नगर के टाइप 2 फ्लैट्स में स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना और संबंधित विभागों को निर्देश भी दिए। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली में आज भी 40 से 80 साल पुरानी पाइपलाइनों से जल आपूर्ति हो रही है, जो राजधानी की सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनते ही मास्टर प्लान पर काम शुरू कर दिया गया है और नई पाइपलाइनें बिछाई गई हैं। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष और रोहिणी के विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आज अपनी विधानसभा में कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गुप्ता ने बताया कि सेक्टर 9 स्थित सौभाग्य अपार्टमेंट में वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केंद्र और नवीनतम अपार्टमेंट में आरएमसी सड़क निर्माण कार्य का उन्होंने उद्घाटन किया। श्री गुप्ता ने सेक्टर 8 के पॉकेट A1 और E16 में पार्क की चारदीवारी के निर्माण कार्य का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष ने अपने आवास स्थित विधायक कार्यालय में जन सुनवाई का आयोजन भी किया। दिल्ली नगर निगम ने सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ 2.0 अभियान के तहत आज दिल्ली के सिविल लाइंस के कुदेसिया पार्क में स्वच्छता साइक्लोथॉन और वॉकाथॉन का आयोजन किया। निगम ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वच्छता और सफाई के प्रति जागरूकता फैलाना और मच्छर जनित रोगों के खिलाफ सामूहिक प्रयास को प्रोत्साहित करना था। निगम के अनुसार इस कार्यक्रम में नागरिकों, निगम अधिकारियों, सफाई कर्मचारियों और युवा स्वयंसेवकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रही करोल बाग और सिटी एसपी जोन की उपायुक्त स्वेतिका सचान ने एक स्वच्छ और स्वस्थ दिल्ली के निर्माण में जन भागीदारी की महत्ता पर जोर दिया। उन्होंने नागरिकों से नगर निगम की स्वच्छता और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के प्रयासों में सक्रिय सहयोग की अपील की। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि पिछली आम आदमी सरकार ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया था, इसलिए दिल्ली की जनता ने उन्हें चुनाव में नकार दिया। मीडिया से बातचीत में श्री सूद ने कहा कि पिछले 27 वर्षों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सरकारों में सरकारी विद्यालयों की संख्या में लगातार गिरावट हुई और जिसके परिणाम स्वरूप निजी स्कूलों को बढ़ने का मौका मिला।
यहाँ आपकी सरकार ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को खंडर ही बनाया था, तभी तो जनता ने नकार दिया। क्योंकि पिछले 27 सालों से जब से भाजपा की सरकार दिल्ली में नहीं थी, कांग्रेस और उसकी बी टीम आम आदमी पार्टी ने प्राइवेट स्कूलों को बढ़ने का मैदान दिया, सरकारी स्कूल कम होते चले गए। आज 1000 सरकारी स्कूल है, 1700 प्राइवेट स्कूल है, किसकी फेलियर है? आपने ठीक पूछा, आपकी सरकार ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को खंडर ही बना दिया है।
उधर दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार ने राजधानी में कांवड़ शिविरों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रदान किए हैं, आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री सूद ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि कांवड़ियों के लिए सरकार द्वारा इन शिविरों में सभी जरूरी सुविधाएं जैसे शौचालय, पेयजल और बिजली उपलब्ध करवाई गई है।
सिंगल विंडो क्लियरेंस इतिहास में कभी नहीं मिली। चुनाव में जैसे एक कैंडिडेट को एक विंडो पे क्लियरेंस मिलती है, ऐसे इस कावड़ शिविर की क्लियरेंस मिली है। कावड़ शिविरों पे शौचालयों की व्यवस्था, उसके साथ पानी, उसके साथ सफाई कर्मचारी, 1200 यूनिट बिजली, ट्रांसपेरेंट तरीके से खाते में पैसा कहीं आए जाए बिना। आप केवल बम बम भोले करिए, जय महाकाल कहिए और जनता की सेवा करिए, बाकी काम करने के लिए रेखा गुप्ता जी की सरकार है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में पुलिस की उत्तर पश्चिम जिले की टीम ने 3 बांग्लादेशी नागरिकों को शहर के मुखर्जी नगर इलाके से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। पुलिस ने बताया कि इनसे पूछताछ में पता चला है कि ये लोग कचरा बीनने का काम और छोटी मोटी चोरियां करते थे। पुलिस के अनुसार इनके पास से 3 पहचान पत्र और 3 स्मार्टफोन भी बरामद किए गए हैं, जिनमें प्रतिबंधित ऐप मिले हैं। पुलिस ने बताया कि विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के साथ समन्वय कर इनके निर्वासन के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बताया है कि इस कार्रवाई में 2 तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया गया, जिसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए से भी अधिक है। पुलिस ने बताया कि ये गिरोह उत्तर प्रदेश के बरेली और रामपुर, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पंजाब तक फैला हुआ था। दिल्ली सरकार की वन महोत्सव 2025 के तहत पीबीजी ग्राउंड दिल्ली रिज क्षेत्र में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में आज भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई सर्वोच्च न्यायालय के 20 न्यायाधीशों के साथ शामिल हुए। इस अवसर पर उनके साथ दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद रहे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में श्री सिरसा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की मौजूदगी ये संदेश देती है कि दिल्ली की हरियाली और साफ हवा लौटाने की जिम्मेदारी सभी की है।
दिल्ली के पॉल्यूशन के अंदर ये बहुत बड़ी एक जीत की ओर कदम है जब देश के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश इस भावना को समझें और खुद भी और अपने स्पाउस परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचें और देश के जन जन को ये संदेश दें कि पर्यावरण इतना प्यारा है, जहाँ हम अपनी माँ को समर्पित एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और उसकी अहमियत को समझें कि सबसे बड़े हमारे देश के न्यायाधीश भी इस एक पेड़ की अहमियत को इतना समझते हैं। ये संदेश पूरे भारत में गया है, ये संदेश देश के जन जन में गया और इसकी अहमियत आज पूरी देश को समझ में आएगी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ट्रिपल इंजन की सरकार राज्य में तेज गति से विकास कर रही है। जनता ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी पर जो विश्वास जताया है, उस विश्वास पर खरा उतरने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सरकार प्रधानमंत्री के साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री सैनी ने आज दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के जन्मदिवस पर जुलाना विधानसभा के गांव नंदगढ़ में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री सैनी ने आज जुलाना क्षेत्र की जनता को 16.80 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। कार्यक्रम में गांव की बेटी दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता भी उपस्थित रही। मुख्यमंत्री ने उन्हें जन्म दिवस की बधाई और शुभकामनाएं भी दी।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के अंदर 23 जनवरी 2015 को पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर आए थे और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा पूरे देश के लिए दिया था कि हमने बेटी को बचाना भी है और बेटी को पढ़ाना भी है। और मुझे खुशी है बेटियों को सशक्त और मजबूत करने का काम हरियाणा में बड़ी गति से चला है। आज उसका परिणाम है हरियाणा के एक छोटे से गांव नंदगढ़ में जन्मी बेटी को दिल्ली की प्रमुख जिम्मेवारी देने का काम किया है।
श्री सैनी ने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री की राजनीतिक जीवन यात्रा हमें बताती है कि भारत आज बदल रहा है और नंदगढ़ जैसे छोटे से गांव में जन्मी और दिल्ली जैसे महानगर की मुख्यमंत्री बन जाती है। ये पूरे देश को एक संदेश देता है कि अब भारत के अवसर वंशवाद से नहीं बल्कि परिश्रम से तय होते हैं। इस अवसर पर श्रीमती रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में हरियाणा तीव्र गति से विकास की राह पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में सड़क नेटवर्क सुदृढ़ हुआ है और लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधाएं मिल रही हैं।
विकसित भारत का जो सपना है वो विकसित हरियाणा और विकसित दिल्ली से होके जाएगा, और विकसित हरियाणा का छोर आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने पकड़ा है तो दूसरा छोर विकसित दिल्ली का मेरे हाथ में दिया।
श्रीमती गुप्ता ने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा इसी गति से विकास के मामले में नित नई ऊंचाइयां छुएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। चंद्रावल वाटर वर्क्स में मरम्मत कार्य के कारण राजधानी के विभिन्न हिस्सों में सोमवार और मंगलवार को पेयजल आपूर्ति बाधित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि सोमवार की शाम को जलापूर्ति प्रभावित या बाधित रहेगी, वहीं मंगलवार की सुबह पानी कम दबाव पर उपलब्ध रहेगा। इस दौरान सिविल लाइन्स, हिंदू राव अस्पताल, कमला नगर, शक्ति नगर, करोल बाग, पहाड़गंज, राजेंद्र नगर, पटेल नगर और इंद्रपुरी समेत कई क्षेत्र प्रभावित रहेंगे। जल बोर्ड ने स्थानीय निवासियों से पर्याप्त मात्रा में पानी के भंडारण का अनुरोध किया है। आपातकाल स्थिति में जल बोर्ड के कंट्रोल नंबर 011-29-23-4746 और 1916 पर फोन कर पानी के टैंकर मंगाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में एक बैठक के दौरान मुनक कैनाल पर प्रस्तावित एलिवेटेड कॉरिडोर सहित लोक निर्माण विभाग के विभिन्न कार्यों की समीक्षा की। बैठक में दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेश साहिब सिंह भी उपस्थित थे। उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेसवे पर आज सुबह दो अलग अलग दुर्घटनाओं में 6 लोगों की मृत्यु हो गई और 19 घायल हो गए। मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि सभी घायलों की हालत स्थिर है।
पहला एक्सीडेंट 140 माइलस्टोन रात्रि 3 बजे, इसमें एक चलती इको कार सामने चल रहे ट्रक में जाकर घुस गई। संभवतः ड्राइवर को नींद आने के चलते ये घटना हुई है। घायल को एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। दूसरी घटना 151 माइलस्टोन पर रात्रि 4 बजे के करीब ये घटना हुई, इसमें एक प्राइवेट बस है उसमें भी मोस्ट प्रोबेबली ड्राइवर को नींद आने के कारण ये बस ओवरटर्न कर गई, जिससे कि उसमें जो सवार लोग मध्य प्रदेश जा रहे थे इसमें घायल है, उनको तत्काल भर्ती कराया गया।
प्रवर्तन निदेशालय ने ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप मामलों में तकनीकी कंपनियों गूगल और मेटा को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार निदेशालय ने दोनों कंपनियों के प्रतिनिधियों को सोमवार को अपने दिल्ली मुख्यालय में पेश होने के लिए बुलाया है। एजेंसी इन ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स के प्रचार में डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका की जांच कर रही है। राजधानी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में आज मौसम साफ रहा, वहीं कुछ इलाकों में बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 0.7 डिग्री कम 34.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बादल छाए रहने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी की सभी प्रमुख सब्जी, फल और फूल मंडियों के सुगठित प्रबंधन, रखरखाव और सुधार को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। दिल्ली पुलिस की अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा, चंद्रावल वाटर वर्क्स में मरम्मत कार्य के कारण राजधानी के विभिन्न हिस्सों में सोमवार और मंगलवार को पेयजल आपूर्ति बाधित रहेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।